एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
और आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी कहानी में जो विज्ञान, कल्पना और दोस्ती की सीमाओं को छूती है। एंडी वेयर की शानदार नॉवल प्रोजेक्ट हेल मैरी।
बिल्कुल, मैं हूँ आपका मेजबान।
और मैं आपकी साथी मेजबान। देखिए, ये किताब है तो साइंस फिक्शन, इसमें कोई शक नहीं।
हाँ।
पर बात सिर्फ साइंस फिक्शन होने की नहीं है।
सही कहा।
इसके अंदर जो वैज्ञानिक सोच है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया है और जो गहरे मानवीय सवाल छुपे हैं, वो इसे खास बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ स्पेसशिप और एलियंस की कहानी नहीं है।
बिल्कुल, और आज के दौर में मुझे लगता है ये किताब इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे बिल्कुल अलग सोच वाले लोग, यहाँ तक कि अलग प्रजातियां भी,
हाँ,
मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकती हैं। ये किताब एक सवाल पूछती है, जब अस्तित्व ही दांव पर हो तो सहयोग और बलिदान की हद क्या हो सकती है।
चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से, एंडी वेयर। ये कोई मतलब टिपिकल लेखक वाले खांचे में फिट नहीं होते।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पहले एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, है ना?
जी हाँ, AOL और ब्लिजर्ड जैसी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं और बचपन से अंतरिक्ष के, जिसे कहते हैं ना, कीड़े थे, बड़े शौकीन।
और उनकी यही टेक बैकग्राउंड और वो वैज्ञानिक माहौल जिसमें वो पले बड़े, उनके पिता पार्टिकल फिजिसिस्ट थे।
अच्छा।
हाँ, तो ये सब उनकी लेखनी में साफ झलकता है। वो लिखते हैं हार्ड साइंस फिक्शन, मतलब विज्ञान आधारित विश्वसनीय लगने वाली कहानियां।
उनकी पहली बड़ी हिट द मार्शियन, उससे उनका अंदाज सेट हो गया था प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक, साइंस पर जोर।
हाँ, वेयर की खूबी यही है कि वो मुश्किल वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट जैसे एस्ट्रोफिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी,
हाँ, काफी जटिल चीज है।
बिल्कुल, उनको कहानी में इस तरह पिरोते हैं कि वो बोझल नहीं लगती बल्कि रोमांचक लगती है, और रिसर्च पर बहुत ध्यान देते, मैंने सुना है।
हाँ, अक्सर एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि विज्ञान सटीक हो।
मतलब उनकी कहानियों में कोई जादू टोना नहीं है,
नहीं,
सब कुछ दिमाग और विज्ञान से हल होता है, मुश्किलों का हल।
एग्जैक्टली। और इससे किरदार और कहानी दोनों थोड़े जमीन से जुड़े लगते हैं।
विश्वसनीय,
उनका नजरिया भी दिलचस्प है, उम्मीद भरा, पर हकीकत को ध्यान में रखते हुए। इसे हम आशावादी यथार्थवाद कह सकते हैं शायद।
हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, आशावादी यथार्थवाद। तो प्रोजेक्ट हिल मैरी आखिर है किस बारे में? अगर बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक साइंटिस्ट की कहानी है। वो सुदूर अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप पर जागता है, उसकी याददाश्त जा चुकी है
पूरी तरह से
लगभग, और उसे धीरे धीरे पता चलता है कि पूरी इंसानियत को बचाने का जिम्मा उसी पर है। सोचिए जरा, बाप रे। अच्छा, हीरो कौन है, मतलब किरदार का नाम?
डॉक्टर राइलैंड ग्रेस। पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे, फिर बाद में मिडिल स्कूल में साइंस टीचर बन गए।
वो टीचर, ये इंटरेस्टिंग है।
हाँ, और वो खुद को एक ऐसे मिशन पर पाते हैं जिसका मकसद है सूरज की रोशनी को धीरे धीरे खत्म कर रहे एक रहस्यमयी सूक्ष्मजीव।
सूक्ष्मजीव,
हाँ, एस्ट्रोफेज नाम का, उसका तोड़ ढूंढना, क्योंकि अगर ये एस्ट्रोफेज नहीं रुका तो पृथ्वी जम जाएगी, ग्लोबल कूलिंग।
ओहो, मतलब दांव पर सब कुछ है।
सब कुछ। और कहानी दो पटरियों पर एक साथ चलती है, ड्यूल टाइमलाइन।
अच्छा, कैसे?
एक तरफ वर्तमान में ग्रेस का स्पेसशिप पर अकेला संघर्ष, उसे सब कुछ फिर से समझना पड़ रहा है, वो कहाँ है, क्यों है।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ फ्लैशबैक, अतीत की यादें। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर यह संकट कैसे खड़ा हुआ, कैसे प्रोजेक्ट हेल मेरी बना, और ग्रेस इस वन वे मिशन का हिस्सा कैसे बना।
वन वे मिशन, मतलब वापसी का कोई प्लान नहीं था?
नहीं, शुरू में तो नहीं, यही तो बात है। लेकिन ये सिर्फ साइंस और स्पेस की कहानी नहीं है, जैसा मैंने कहा। इसका दिल है दोस्ती में, त्याग में और मुश्किल नैतिक फैसलों में। और कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब ग्रेस का सामना होता है एक एलियन से।
एलियन, सच में?
हाँ, और वो एलियन भी उसी समस्या से जूझ रहा है।
अरे वाह, ये तो कमाल है। तो मतलब ये सवाल भी उठता है कि क्या अलग प्रजातियां दोस्त बन सकती हैं, मिलकर काम कर सकती हैं?
बिल्कुल, यही सब सवाल है। चलिए कहानी के मुख्य पड़ावों पर थोड़ी नजर डालते हैं, बिना स्पॉइलर दिए कोशिश करते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
तो शुरुआत होती है ग्रेस के जागने से।
हाँ,
अकेला, याददाश्त खो चुका, वो सिर्फ अपने वैज्ञानिक ज्ञान के बूते समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ है, क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि उसके दो साथी क्रू मेंबर्स मिशन के दौरान मर चुके हैं।
ओह, बहुत अकेलापन होगा,
बहुत ज्यादा। फिर फ्लैशबैक हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर एस्ट्रोफेज नाम के जीव की खोज हुई है। ये सूरज की ऊर्जा पी रहा है
और दुनिया भर में अफरा तफरी मच गई होगी,
जाहिर है। फिर एक बेहद सख्त, मतलब बहुत ही कठोर लीडर हैं ईवा स्ट्रैट, वो प्रोजेक्ट हेल मेरी शुरू करती हैं।
और ग्रेस को इसमें शामिल कर लिया जाता है।
हाँ, उसकी पुरानी रिसर्च अचानक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसे मजबूर किया जाता है इस वन वे मिशन पर जाने के लिए। टाओ सिटी सिस्टम जाना है।
टाओ सिटी क्यों?
क्योंकि वहां भी एस्ट्रोफेज है, पर वहां का सूरज स्थिर है। ऐसा क्यों है? यही पता लगाना है, समाधान वही मिल सकता है।
अच्छा, तो वो पहुंचता है टाओ सिटी और फिर
वहां पहुंचकर ग्रेस को मिलता है एक एलियन स्पेसशिप। और फिर होता है इतिहास का पहला इंटरस्टेलर संपर्क। भाषा तो है नहीं कॉमन,
तो बात कैसे होती है?
गणित और भौतिकी के नियमों के जरिए, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स।
कमाल है।
उसकी मुलाकात होती है रॉकी से, एक मकड़ी जैसा दिखने वाला एलियन।
पर वो एक कमाल का इंजीनियर है।
रॉकी नाम भी दे दिया।
हाँ, ग्रेस ने।
और पता चलता है कि रॉकी का ग्रह एरिड, वो भी एस्ट्रोफेज के खतरे में है। उसके क्रू के लोग भी मारे गए हैं, वो भी अकेला है।
मतलब दोनों एक ही नाव में सवार हैं।
बिल्कुल। यहां से कहानी का रुख बदल जाता है। ग्रेस जो बायोलॉजिस्ट है और रॉकी जो इंजीनियर है,
वो टीम बन जाते हैं।
हाँ, मिलकर काम करना शुरू करते हैं, अपनी जानकारी, अपनी तकनीक सब साझा करते हैं। उनके बीच की बातचीत बहुत दिलचस्प है। उसमें ह्यूमर है, गर्मजोशी है, रॉकी के कुछ तकिया कलाम है, अमेज।
अच्छा अच्छा अच्छा
हाँ हाँ
अमेज।
हाँ, वो मिलकर एक समाधान खोज निकालते हैं। टोमोइबा नाम का एक जीव जो एस्ट्रोफेज को खाता है।
वाह, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
लगता तो यही है, खुशी का माहौल होता है, लेकिन
खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती।
क्यों, क्या हुआ? पहले तो कुछ इंजीनियरिंग की समस्याएं आती हैं रॉकी के शिप के साथ, फिर एक भयानक खोज होती है।
क्या?
ग्रेस को पता चलता है कि वो जो टोमोइबा पाल रहा है, वो मर रहे हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए नाइट्रोजन चाहिए।
ओह, और रॉकी के ग्रह पर नाइट्रोजन नहीं है?
नहीं, वहां मीथेन बेस्ड एटमॉस्फेयर है, और ग्रेस के अपने सैंपल भी दूषित हो जाते हैं। लगता है सब खत्म, दोनों मिशन फेल।
उफ, बहुत निराशाजनक।
बहुत। और यही आता है कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संकट। ग्रेस को एहसास होता है कि उसके पास कुछ छोटे प्रोब्स में टोमोइबा के साफ सैंपल हैं। वो पृथ्वी को बचा सकता है,
लेकिन रॉकी का क्या?
वही तो, उन सैंपल से रॉकी और उसकी प्रजाति नहीं बच सकती। तो ग्रेस को चुनना है, अपना घर बचाए या अपने नए दोस्त को।
ये तो बहुत मुश्किल चुनाव है,
बहुत भारी फैसला। और ग्रेस एक फैसला लेता है, वो रॉकी को धोखा देता है, कहता है सब ठीक है, तुम घर जाओ, अपना बचा हुआ ईंधन उसे दे देता है।
ओहो।
और पृथ्वी के लिए सैंपल लॉन्च कर देता है, खुद मरने के लिए तैयार हो जाता है।
लेकिन अंत में रॉकी दोस्ती निभाता है, उसे समझ आ जाता है कि ग्रेस ने क्या किया है, वो वापस आता है।
वापस आता है।
हाँ, और ग्रेस को बचाता है। कहानी के आखिर में ग्रेस रॉकी के ग्रह पर पहुंचता है, वहां के लोगों को, एरेडियंस को बचाने में मदद करता है, और वहीं एक शिक्षक के रूप में नई जिंदगी शुरू करता है।
क्या उसे पता चलता है कि पृथ्वी बची या नहीं?
नहीं, उसे नहीं पता, लेकिन वो सुकून में है, एक नई शुरुआत।
वाह, क्या कहानी है, मतलब उतार चढ़ाव से भरपूर।
बिल्कुल। तो ये थी कहानी की एक मोटी मोटी झलक। अब जरा इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों पर बात करते हैं।
एक बड़ा विचार जो उभर कर आता है वो है, विज्ञान एक सार्वभौमिक भाषा है।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है।
कैसे?
गणित और भौतिकी के बेसिक नियम।
बिल्कुल, बुनियादी नियम।
दो बिल्कुल अलग अनजान प्रजातियों के बीच एक पुल का काम करते हैं। जहाँ भाषा फेल हो जाती है, वहाँ साइंस बात करती है।
सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद यही वो असली रोजेटा स्टोन है, मतलब जो हमें ब्रह्मांड में दूसरों से जोड़ सकता है।
हाँ, जैसे हमारे अपने देश में ही देख लीजिए, कितनी भाषाएं हैं, कितनी संस्कृतियां हैं, पर विज्ञान के सिद्धांत तो सबके लिए एक ही है ना। न्यूटन का लॉ दिल्ली में भी वही है, चेन्नई में भी।
बिल्कुल, ये ज्ञान की सार्वभौमिकता को दिखाता है।
दूसरा अहम संदेश है सहयोग की ताकत, खासकर मुश्किल हालात में।
हाँ, वो एस्ट्रोफेज वाला खतरा जो साझा दुश्मन है, वो ग्रेस और रॉकी को साथ लाता है।
ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है?
नहीं, उससे ज्यादा है।
ये दिखाता है कि कैसे बाहरी खतरा हमें अपने मतभेद भुलाकर एक होने पर मजबूर कर सकता है। वो एक कॉमन ग्राउंड देता है।
ये हमें अपनी जिंदगी में भी दिखता है ना, जब कोई बड़ा संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो अक्सर लोग धर्म, जाति सब भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं।
बिल्कुल।
ये किताब उसी जज्बे को एक तरह से ब्रह्मांडीय स्तर पर दिखाती है।
हाँ, पर यह भी सोचने वाली बात है कि क्या हमें हमेशा किसी बाहरी खतरे की ही जरूरत होती है साथ आने के लिए? क्या हम वैसे ही सहयोग नहीं कर सकते?
ये एक अच्छा सवाल है। खैर, एक और गहरा विषय है त्याग, और जिसे कहते हैं ग्रेटर गुड।
हाँ, वो ईवा स्ट्रैट के कड़े फैसले और फिर ग्रेस का वो अंतिम चुनाव।
ये सवाल उठाते हैं कि बड़े लक्ष्य के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं या रिश्तों को कहां तक कुर्बान किया जा सकता है? क्या अंत साधनों को सही ठहराता है?
ये एक मुश्किल नैतिक सवाल है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हम अपने समाज में भी देखते हैं कैसे लोग परिवार के लिए, समुदाय के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं।
किताब कोई सीधा जवाब नहीं देती, पर ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है।
और एक चीज जो पूरी कहानी में चमकती है वो है उम्मीद और लचीलापन, रेजिलियंस।
हाँ, किरदार हार नहीं मानते, वो मुश्किलों का सामना तर्क से करते हैं, विज्ञान से करते हैं, और यहां तक कि ह्यूमर से भी करते हैं।
ग्रेस और रॉकी का वो रवैया, चलो ठीक है, प्रॉब्लम है, अब इसे सॉल्व करते हैं, निराशा में डूबने के बजाय एक्शन लेना, वो कमाल का है।
ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के जज्बे जैसा है। ये याद दिलाता है कि हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड कितना मायने रखता है।
सकारात्मक सोच और दृढ़ता, इनसे बड़ी से बड़ी बाधा पार की जा सकती है।
आखिर में एक शिक्षक की विरासत का महत्व। ग्रेस कहानी की शुरुआत में टीचर था और अंत में भी एक टीचर ही है, बस उसके छात्र अब एलियन है।
हाँ, ये बहुत प्यारा टच है। ये ज्ञान बांटने, जिज्ञासा जगाने के बुनियादी मानवीय मूल्य को दर्शाता है। शायद ये सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि जीवन का ही एक बुनियादी मूल्य हो।
बिल्कुल, एक अच्छा शिक्षक पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो किसी भी ग्रह पर क्यों न हो। ये ज्ञान के प्रसार की, नॉलेज शेयरिंग की शक्ति को रेखांकित करता है।
किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो इन संदेशों को बहुत खूबसूरती से समेटते हैं। अब एग्जैक्ट कोट करना तो मुश्किल है, पर उनके पीछे का जो भाव है, हाँ, जैसे एक आइडिया है परिकल्पित जोखिम लेने का, कैलकुलेटेड रिस्क।
हाँ,
कहानी में एक भाव आता है कि कभी कभी जब सारे रास्ते बंद लगें तो आपको वो मुश्किल अनिश्चित दाव खेलना पड़ता है, जिसे शायद अंग्रेजी में कहते हैं रोल द हार्ड सिक्स।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी सेफ खेलना काफी नहीं होता, आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है।
दूसरा, वैज्ञानिक सोच की असली ताकत, ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तर्क करना है, अवलोकन करना है, प्रयोग करना है, और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखना है।
हाँ, यही तरीका है जो ग्रेस और रॉकी को उन लगभग असंभव लगने वाली समस्याओं का हल निकालने में मदद करता है।
और ये दिखाता है कि ये तरीका सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, जिंदगी की हर मुश्किल में काम आ सकता है, लॉजिकल थिंकिंग।
और बेशक दोस्ती का महत्व, ग्रेस और रॉकी का रिश्ता वो इस किताब का दिल है, सच में।
बिल्कुल, वो कितने अलग हैं दिखने में, बोलने में, रहने में। सोचिए, एक इंसान और एक मकड़ी जैसा एलियन, हाँ, फिर भी उनके बीच इतना गहरा भावनात्मक और व्यवहारिक रिश्ता बनता है।
उनका वो फिस्टमी वाला जेस्चर, वो उनके अनोखे बंधन का प्रतीक बन जाता है।
सही कहा। ये दिखाता है कि कनेक्शन, वो जुड़ाव, किसी भी सीमा से परे हो सकता है, अगर नीयत साफ हो तो।
साथ ही एक नैतिक सिद्धांत उभरता है, हर बुद्धिमान प्रजाति को जीने का हक है, अस्तित्व का अधिकार।
ग्रेस का अंतिम फैसला इसी सोच पर आधारित लगता है ना?
हाँ, ये हमें अपनी नैतिकता के दायरे को बढ़ाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी प्रजाति, अपने लोगों तक ही सीमित है, या उससे आगे भी है?
गहरा सवाल है, और मुझे व्यक्तिगत रूप से रॉकी की वो बच्चों जैसी जिज्ञासा और आश्चर्य बहुत पसंद आया, वो अमेज। अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल।
हाँ हाँ, वो कमाल था।
वो खोज और सीखने के शुद्ध आनंद को दर्शाता है, जो किसी भी वैज्ञानिक या असल में किसी भी सीखने वाले इंसान के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, वो वाओ फैक्टर।
बिल्कुल। अब सवाल ये है कि इन सब विचारों को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, मतलब क्या प्रैक्टिकल टेक अवे हैं?
हाँ, ये जरूरी है। पहला तो मुझे लगता है संकट प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट।
कैसे?
किताब दिखाती है कि कैसे पैनिक करने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, किसी बड़ी समस्या को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना, जैसा ग्रेस और रॉकी बार बार करते हैं।
हाँ, ये तरीका तो ऑफिस के प्रोजेक्ट से लेकर घर की किसी अचानक आई मुश्किल तक हर जगह काम आ सकता है। ब्रेक इट डाउन।
बिल्कुल।
दूसरा, शिक्षा का तरीका। ग्रेस जैसे मुश्किल साइंस कॉन्सेप्ट्स को रोजमर्रा की चीजों और कहानी से जोड़कर समझाता है।
हाँ, वो कमाल है।
वो हमें सिखाता है कि किसी भी जटिल विषय को सरल और दिलचस्प कैसे बनाया जाए, चाहे हम टीचर हो, पेरेंट हो या बस किसी दोस्त को कुछ समझा रहे हो। सिद्धांत को प्रैक्टिकल बनाना।
सही बात है, और टीम वर्क के लिए भी बेहतरीन सबक है इसमें। हाँ, ग्रेस और रॉकी की पार्टनरशिप वो दिखाती है कि जब अलग अलग स्किल और नजरिए वाले लोग साथ काम करते हैं तो धैर्य कितना जरूरी है, खुला संवाद कितना जरूरी है,
और एक साझा लक्ष्य पे फोकस रखना, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना और शक्तियों का सही इस्तेमाल करना, कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को।
एग्जैक्टली। और नैतिक दुविधाएं। ग्रेस का चुनाव हमें सिखाता है कि जिंदगी में अक्सर आसान काले सफेद जवाब नहीं होते।
हाँ, ग्रे एरियाज होते हैं।
हमें अलग अलग जिम्मेदारियों और मूल्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। ऐसे में रुककर सोचना, अपने सिद्धांतों को समझना और फिर पूरी जिम्मेदारी से फैसला लेना महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, समस्या समाधान में फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर वापस जाना।
हाँ, वो क्या है?
मतलब जब आप फंसा हुआ महसूस करें तो समस्या की एकदम जड़ तक जाएं, उसके बुनियादी सिद्धांत क्या है उसे समझें। अक्सर जवाब वहीं छिपा होता है।
अच्छा पॉइंट है। और हाँ, मुश्किल वक्त में भी थोड़ा ह्यूमर और सकारात्मकता बनाए रखना, ग्रेस की तरह, वो बहुत मदद करता है।
बहुत ज्यादा। तो कुल मिला के इस किताब से आपकी सबसे बड़ी सीख या सबसे यादगार पहलू क्या रहा? कुछ एक चीज जो आपके साथ रह गई?
मेरे लिए शायद सबसे कमाल की बात ये थी कि कैसे एक किताब जो इतनी ज्यादा विज्ञान और तकनीक पर आधारित है, वो दोस्ती और भावना की इतनी गहरी, इतनी मानवीय कहानी कह सकती है। ग्रेस और रॉकी का रिश्ता, वो वाकई दिल छू लेता है। और वो उम्मीद, वो मैसेज कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, दिमाग और हिम्मत से रास्ता निकाला जा सकता है, हार नहीं माननी है।
और मेरे लिए शायद वो सहयोग की शक्ति, ये देखना कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के प्राणी, जो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, एक साझा मकसद के लिए एक हो जाते हैं, ये बहुत प्रेरणादायक है।
हाँ,
ये याद दिलाता है कि हमारी समानताएं शायद हमारे मतभेदों से कहीं ज्यादा गहरी हो सकती हैं, अगर हम उन्हें देखने को तैयार हों। और हाँ, वो शिक्षक वाली बात, ज्ञान बांटने का जो सुकून है, जो संतुष्टि है, वो शायद सबसे बड़ा इनाम है। ये एक बहुत सुंदर विचार है जिस पर कहानी एक तरह से खत्म होती है।
बिल्कुल, एक बेहतरीन किताब और उस पर अच्छी ही चर्चा।
हाँ, मजा आया।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र का फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।